श्री प्रभुपाद की जय। आप सबसे मेरा प्रणाम है। आज का क्लास में 20 साल के बाद पहली बार हिंदी में करने जा रहा हूँ, तो कभी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ग्लास के टुकड़े शीशे हैं, उनको जिग्सो पज़ल की तरह इकट्ठा करके एक दोबारा ग्लास बनाना है, जिसमें आप सब लोग मेरा सहयोग दे सकते हैं। पिछले 20 साल से मैं वॉशिंगटन DC में प्रचार करता आया हूँ, और उसके पहले 10 साल मैं दिल्ली में था, और उसके पहले मैं 15 साल भक्तिवेदन मैंने लंदन में हमने प्रचार किया था। तो वहाँ से हमारी ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा हुई और वहाँ से हम आगे भक्ति में बढ़े हैं। तो आज का श्लोक है 4th canto 30th chapter or 19th श्लोक, राइट? पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्तयातायामानां न वदाय गृहमाता गृहेषु आविष्टां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहमाता गृहेषु आविष्टां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तयातायामानां न बन्धाय गृहमताः। आप लोग बोलिए। पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तयातयामानां न बन्धाय गृहमताः। और कोई गृहेषु, गृहस्य जीवन में अविशताम प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसाम मनुष्यों का कुशल कर्मणाम शुभ कर्मों में लगे हुए मतु वार्ता मेरी कथाओं में यात बीतता है यामानाम जिसका प्रत्यक्षण न नहीं बंधाय बंधन हेतु गृहा गृहस्थ जीवन मता विचार किया गया। ट्रांसलेशन, जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भति भाली समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। आप सब लोग बोलिए मेरे पीछे, जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देते हुए और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताते हैं। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य भाई शिल प्रभुपाद की जय। सामान्य परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थक वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है, किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है। क्या प्रभुपाद जी बताए, श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वह कभी भी भौतिक संसार के कलम से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भागवत गीता में इस प्रकार हुई है, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। सामान्य कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वही निश्चित रूप में मुक्त अथवा में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है, जो व्यक्ति अपने जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उस सब से भगवान की सेवा में लगा रहता है वह हर अवश्य अवस्था में मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भव बंधन में अधिकाधिक कंसते जाते हैं, उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण भगवान कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतल वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रहते हैं। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए ही खाते हैं पीते हैं तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कल्म से बचाता है, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, कृष्ण भजने यहाँ है अनुकूल विषय बलिया त्यागे ताहा है भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रश्चता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। सब लोग हाथ ऊंचा करिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोक्ता राम योग्य तपसं सर्वलोके महेश्वरम सुरिदं सर्वभूतानां यात्रामां शांतिं रुच्यते। प्रभुपाद जी पहले ही पैराग्राफ में ये बताते हैं कि भोक्ता राम योग्य तपसं, कि सब चीज के भोक्ता श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं। और तीसरी लाइन में बोलते हैं सुरिदं सर्वभूतानां। सुरिदं, आप सब लोग अपने हाथ रखिए, हैं कहाँ है भगवान? हृदय में है कि नहीं? झांक के देखा है कभी? बात करके देखा है कभी? कोशिश की है कभी? जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि परमात्मा यहाँ स्वयं बैठे हैं? एक मैं आपको बालिका की लीला सुनाऊंगा, क्योंकि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर ध्यान दिया है कि हमको सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और सिर्फ हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा होना चाहिए। एक 6 साल की बालिका कलकत्ता में जा रही थी, एकदम से ट्रक आई, बालिका ऊपर गई नीचे गिरी। क्या हुआ? ऊपर गई और नीचे गिरी। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, 4-5 साल पहले की बात है। तो बालिका इतनी छोटी थी और उनका एक भी हड्डी नहीं टूटी, उनका एक बूंद भी खून नहीं निकला। अगर आपको इसका मतलब अंदाजा लगाना है कि टक्कर ट्रक के साथ लगाने क्या होता है, सिर्फ आप नीचे जमीन पर हाथ मारोगे ना तो देखो कितना कष्ट होता है। ये तो ट्रक आके मारता है, बालिका ऊपर जाती है, नीचे गिरती है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कोमा में पड़ी है 3 दिन के लिए, बालिका कोमा में पड़ी है। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन थोड़ा सा उसके नाक और कान में से वाइटिस गोरे रंग का थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, ऐसे उसके अलावा कुछ निकलता है। सब लोग चिंता में है कि अभी तो चली जाएगी, लेकिन सब लोग खास करके डॉक्टर लोग परेशान हैं कि इसको इतनी बड़ी चोट लगी है लेकिन कोई भी चीज़ टूटी नहीं है, कोई खून नहीं निकला हुआ है, हृदय चल रहा है। छठे दिन बालिका की आँख खुलती है और सब लोग उससे देखते हैं तो बोलती है, मैं कहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। तो उसको पूछा गया कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें याद है तुम्हें क्या है? सबसे पहले तो सब लोग आश्चर्य हो जाते कि इतनी चोट लगी थी, इतने दिन तक ये पड़ी हुई बेहोश पड़ी है और उठती और एकदम से बातें करना शुरू कर देती है। तो बोलती, हाँ मुझे याद है कि मुझे ट्रक ने मारा था। किसने मारा था? एक ट्रक ने टक्कर मारा था मेरे को। वे ऊपर जाती थी इतने मुझे मालूम है, लेकिन उसकी बात में कहा गिर क्या ये मुझे एकदम से मालूम नहीं, कि मुझे इतना मालूम है कि नरसिंह भगवान की गोद में मैं हूँ। किसकी गोद में? नरसिंह भगवान की। अब देखो ये इस बालिका को आशीर्वाद कैसे मिला। उनकी माँ है, सब परिवार सब कुछ छोड़ के विदेश में से यहाँ आ गई और एकदम से उसको बस नरसिंह भगवान से बहुत ही लगाव था। इतना लगाव था कि आप पूछो मत, चांटिंग भी करती है अपना सोला माला, उसके अलावा हर समय नरसिंह भगवान की प्रार्थना करती है। नरसिंह भगवान की सब लीला उसको मालूम है, जितनी शायद हम सब लोग मिलके भी करेंगे तो हमें नहीं याद आएगी। इतनी लीला उनको मालूम, इतना याद की सुनकी। और उन्होंने हमेशा नरसिंह भगवान की प्रार्थना की है। तो ये है भगवान, जब भक्त भगवान को सब कुछ अर्पित कर देता है, सब कुछ त्याग देता है कि मुझे किसी भी चीज़ का भोग नहीं करना है, जो भी मेरे पास है वो भगवान के लिए है, जो भी मैं करता हूँ करती हूँ भगवान के लिए करती हूँ। तो ये भगवान इसी तरह हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसी माता जब कई सालों के बाद उनको घर से फोन आया कि तुम्हारे पिताजी अभी जा रहे हैं, देह छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आ सकते हो। अभी माता ने जब घर छोड़ा था, किस अवस्था में घर छोड़ा था, क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली से, तो उनके पिताजी बहुत नाराज़ रहते थे कि ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं कि आधा सिंह के रूप में और आधा मनुष्य के रूप में, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ऐसा है ना, अभी यहाँ आपका तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि इसके पीछे यहाँ किचन है, लेकिन अगर मैंने किचन नहीं देखा है तो मुझे तो, मैं तो ये बोलूँगा ना मुझे नहीं मालूम क्या है, या तो नहीं हो सकता है किचन, आप तो वैसे बोल रहे हो। तो ये मनुष्य की दुर्दशा है कि मनुष्य को कोई भी सही चीज़ बताई जाती है तो उनके लिए समझना मुश्किल होता है। तो उनके पिता हमेशा नाराज़ रहते थे, उसको घर से भगा दिया। वो भी वही चाहते कि मुझे घर से निकाले तो मैं मायापुर में जाके भगवान की भक्ति करूँ, नरसिंह भगवान की सेवा करूँ। तो जब बुलावा आया तो वो गई। तो जब पहुँची तो उनके पिताजी बेहोश पड़े हुए थे, 2 हफ्ते से बेहोश पड़े थे। तो आज जाकर बैठ गई, उनकी चरणों के पास जाकर बैठ गई। देखो हमारा कल्चर है कि जो बच्चे होते हैं माँ बाप के चरणों के पास में रहते हैं, शेरपनी चढ़ते हैं ना। आजकल तो दुर्दशा है सारी दुनिया की, सब परिवारों की, लेकिन जो कल्चर के द्वारा सिखाया जाता है, जो लोग हम लोग अपना कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम लोग उसमें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब एक बार अगर माँ या तो बाप, जैसे माँ होती है माता गुरु होती है जन्म से, पिता होता है पिता गुरु होते हैं, हमारे वैष्णव जन भक्त फैमिली में तो ऐसे ही होता है। तो जब वो गई तो उन्होंने देखा कि पिताजी बेहोश पड़े, बस लगी रही 24 घंटे, नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाई ने हिरण्य कसी पूर्वक सा शिला दंखाना खाला है, ये तो नरसिंह पढ़ता नरसिंह यते तो हम इतना तो नरसिंह, और जप ही जा रही है। बाकी सब लोग सोच रहे पता नहीं क्या बक बक कर रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही नहीं। एकदम से ध्यानपूर्वक नरसिंह भगवान को बुला रही है, उनको मालूम है कि यही भगवान मेरे पिताजी को मुक्ति दे सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का हाथ ऐसे होने लगा, नहीं तो उंगलियां हिलने लगी। वो गा रही है, इनके पिताजी अभी म्यूजिक बजा रहे हैं, जैसे अभी हमारे भक्त मृदंग बजा रहे थे ना, इसी तरह उनकी हाँ उंगलियां चलने लगी। तो क्या होता है कि वो कोमा में से बाहर आ जाते, बेहोश थे, होश आ गए उनको वापस, और सब लोग खड़े हो उठते ही बोलते कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस बेटी को जिसने धक्का मार के निकाल दिया था वही बोलते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। उसको मालूम भी नहीं कि बेटी आई, लेकिन वो पूछते कि मेरी बेटी कहाँ, देखते हैं तो सामने उसकी बेटी बेटी बैठी हुई है, तो उसको इशारा करते मेरे पास आओ। बोलते हैं कि तुम जो और नरसिंह और नर की जो प्रार्थना करते थे वो मुझे सिखाओ, और मुझे सिखाओ। पूछा गया कि पिताजी आपको क्या हुआ, तो पिताजी बताते हैं कि जब मैं कोमा में था तो आपकी ये जो भगवान है ना वो मेरे साथ में थे, वही जो आपके भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आपके भगवान मेरे साथ खेल भी रहे थे। एक भक्त अगर सही भावना से, सही दृष्टि से, सही दिल से, इसलिए जब हम लोग कीर्तन में भी बैठते हैं ना, चाहे ऊपर बैठो नीचे बैठो उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो दिल है, जो हृदय है, सुहृदम सर्वभूतानाम, जहाँ भगवान बैठे, इसी दिल से हमें कीर्तन करना चाहिए, सिर्फ मन से नहीं। मन से जो हम करते तो भगवान भी सोते चलो है, उल्लू का पट्टा है, ऐसे अपने आप को उल्लू बना रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस भावना से भगवान की पुकार करनी चाहिए, हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद जी बोलते हरे कृष्णा, कृष्णा आपकी जीभा के ऊपर नाच रहे, हम लोग क्यों समझ नहीं रहे, हम में कुछ कमी है। कृष्ण का नाम लेते हुए हमें तो रोमांचित हो जाना चाहिए। आप चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आते हैं, भगवान जब स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, तो उसकी अश्रु धाराएं बहती है, उसके सारे शरीर के जो बाल है रोमांच हो जाते हैं। 24 घंटे कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कोई सोते नहीं है। रात को किसी गृहस्थ के घर में चले गए और दरवाजा बंद किया, सारी रात कीर्तन, दिन में गए बार हरि नाम किया। अभी देखो हमारे लिए यहाँ हरि नाम करना तो बहुत सरल है, जैसे आपकी हरि नाम पार्टी है तो आप लोग तो हर रोज कहीं ना कहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य लगा कि जैसे कुछ देश ऐसे है, मुसलमान का देश तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहाँ तपस्या ही तपस्या है, लेकिन कुछ क्रिश्चियन देश भी ऐसे है कि जहाँ अगर आप हरि नाम करते जाओगे ना तो पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, एक दिन के लिए बंद कर देगी कि आप पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो। हमें ऐसे एक बार अभ्यास हुआ था, हम लोग मैं कुछ 1979 में सबसे पहली बार जब इस्कॉन में जुड़ा तो मुझे इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भेजा गया, तो हम लोग स्कॉटलैंड में हरि नाम कर रहे थे, जो वहाँ जैसे मॉल होते हैं ना, दोनों साइड पर शॉप्स होती है, तो हम लोग कीर्तन करते हैं, फिर जब मॉल की एंड होती वहाँ से टर्न करके वापस आते, कीर्तन करते, पुस्तक बांटी जाती है। तो कुछ ही समय के बाद में एक बहुत बड़ी पुलिस की वैन आ गई, क्योंकि हम लोग 20-25 लोग थे, तो पुलिस वाले जैसे हम इधर जा रहे तो दरवाजा जैसे समझो कि उसी दरवाजे पर मोड़ समाप्त होता है, तो वहाँ आकर 10-15 पुलिस खड़ी रह गई। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे बड़ा बड्र प्रभु करके स्कॉटिश थे और बड़े चतुर थे, तो जब उनकी करीब पहुँचे ना तो एकदम करीब नहीं गए, उन्होंने यू टर्न कर लिया, हम सब लोग कीर्तन करते वापस इस तरफ आ गए। अभी समझो कि ये दीवार जो यहाँ है, यहाँ भी मोड़ ख़त्म हो रहा है, तो वो लोग गाड़ी लेकर उसे घुमा के यहाँ आके खड़े रह गए। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से वहाँ चले गए, ऐसे 4-5 बार ऐसे हुआ। तो ये अभी पुलिस वाले थोड़े परेशान हो रहे थे, गांव वाले भी, लाइट शॉप वाले भी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। क्रिश्चियन जो ईसाई देश वाले हैं, कुछ कंट्रीज बहुत मतलब फ्रेंडली होती है, लेकिन ज़्यादा करके वो लोग बहुत मतलब इच्छालु होते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, जैसे कि हम वहाँ पहुँच रहे थे तो इस बार जो पुलिस का कमांडर था उसने अपनी चतुरता यूज़ की, उसने बोला अपने पुलिस ऑफिसर को सब लोग लाइन लगा लो इस तरफ और सब लोग लाइन लगा लो इस तरफ, फिर जैसे ये लोग बीच में आएंगे तो हम उनको घेर लेंगे। अभी देखो भगवान कितने दयालु हैं। तो हम लोग महामंत्र कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग वहाँ पहुँचे, इन लोग की सारी लाइन लगी थी, तो बोला बड़रा ने एकदम से, उसके हाथ में वो बड़े वाले करताल थे, यू नो, उसने शुरू किया, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। जैसे उन्होंने नरसिंह भगवान की प्रार्थना शुरू की, उसी जो पुलिस का चीफ था उसकी उसके दिमाग में अंदर भगवान ने पता नहीं क्या प्रेरणा दी, वो खड़ा ही रह गया, उसने आदेश ही नहीं दिया कि अभी घेर लो। अभी सब लोग वेट करें, सारी पुलिस वेट करें कि अभी आदेश मिले तो हम इनको घेरें, लेकिन वो आदेश ही नहीं दे रहे। हम लोग वहाँ से घूम के दोबारा आए, उसने सबको बोलो चलो चलो, सब पुलिस को ऑफिसर को लेके चला गया। ये है भगवान की कृपा होती है, इसी देशों में ऐसी भगवान की कृपा होती है, लेकिन इसमें हमारी हृदय की अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जैसे ये माता जी थी, उसने जब पूछा अपने पिताजी को कि पिताजी आपको क्या हो गया, तो उसने बताया कि देखो जब मैं सो रहा था तो भगवान स्वयं आकर मेरे साथ खेल रहे थे, भगवान स्वयं मेरे साथ बातें कर रहे थे, तो कितना मतलब सौभाग्य। देखो एक दुष्ट आदमी था, क्योंकि उसके परिवार में से एक जीवात्मा ऐसे निकला जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, सारा मन तन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। सोचो अगर आपको मैं इस वक्त बोल के आपके जेब में जितने जीते पैसे है, यहाँ हुंडी है, हुंडी में डाल देना, कोई भी ऐसे खाली हाथ नहीं जाए बाहर, किसी के हाथ में एक रुपया भी नहीं, सब लोग यहाँ डाल दो, तो आप कितनी बार सोचोगे, है ना? आप सोचोगे फिर मैं प्रसाद का पैसा कहाँ से डालूंगा, रिक्शा का पैसा कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि हमारी अंदर वो श्रद्धा नहीं है। अगर वो श्रद्धा होती तो हम सब कुछ परित्याग कर सकते हैं। ये परित्याग करने से आपको इतना अनुभव होएगा कि आप खुद अंदर से खुश रहोगे। अंदर से खुश रहना, परमात्मा के साथ में जुड़ के रहना। जब परमात्मा को आपने साथ में रखा है, परमात्मा स्वयं आपके मंदिर में बैठे हुए हैं, आपको भी ये मंदिर मिला है जिसके द्वारा आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, तो फिर देरी किस बात की है? क्यों हम लोग देर कर रहे हैं? क्यों हम लोग खुद ही खुद परेशान होते हैं? जब यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं खाना पीना सोना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। हम लोग जब शुरू में 1979-80 में हम लोग हरि नाम करते थे, भागवत गीता का वितरण करते थे, तो खास करके जनवरी दिसंबर और जनवरी के दो महीने होते जिसमें ईसाई लोग भी बहुत वैसे पैसे बांट देते हैं धर्म के नाम में, क्योंकि वो लोग क्रिसमस में मानते हैं, जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, तो उस वक्त उनका ये स्वभाव होता है, उनका ये मानना होता है कि ये समय हम जो भी दान करेंगे उसको हमें कहीं अधिक गुना पुण्य मिलेगा। तो उस वक्त तो लोग हमको तंग नहीं करते थे, हम लोग बोलते थे कि आप ये भागवत गीता ले लो, भागवतम ले लो। एक तो हमारा भक्त ऐसा था यूरोप में कि वो अपनी ट्रक में सिर्फ भागवतम का सेट लेकर ही जाता था, और एक एक पुस्तक लेकर नहीं जाता, और एक भागवतम का सेट ऐसे ही उठाता था, दो डिवीजन में एक यहाँ रखता था, और जाकर बोलता था कि ये अनमोल रत्न है मेरे पास, आप एक ले लो आपके भाग्य खुल जाएंगे। अंग्रेजी में बोलता था कि अनमोल रत्न है आपके सौभाग्य, तो इसी वक्त ले लो, बाद में पछताओगे, इस वक्त नहीं लोगे। तो अंग्रेज लोग सारा का सारा सेट ले लेते हैं, और वहाँ उन दिनों में $150 या तो 100 पाउंड की आसपास में एक सेट मिलता था, तो हमारे हिसाब से 8-10 हज़ार रुपया होता है इसके साथ। तो मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये भक्त कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता था, कभी 10 सेट कभी 15 सेट सिर्फ भागवतम सेट का ही डिस्ट्रीब्यूशन करता था सारे के साथ। उसको पूछा गया था मायापुर में, जब वो हर साल नंबर वन आता था, तो मायापुर में उसको बुलाया गया कि रोहिणी प्रभु आप थोड़ा कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि आप इतने भागवतम के सेट वो भी विदेश में यूरोप में कैसे बांटते हो। तो उनका यही जवाब था कि मैं सिर्फ भगवान में श्रद्धा रखता हूँ, बाकी बढ़ते कैसे वो ही जानता है, मैं ही कुछ नहीं जानता। ऐसी श्रद्धा होती है तो प्रचार हो सकता है। इसी श्रद्धा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति बहुत आगे बढ़ सकती है। देखो प्रभुपाद जी के पास दो व्यक्ति आए, श्याम सुंदर और मुकुंद। अभी मुकुंद गोस्वामी है, लेकिन उन समय मुकुंद करके थे। मुकुंद गोस्वामी सबसे पहले व्यक्ति वो है कि जो प्रभुपाद जी को मिले थे टॉम्पसन स्क्वायर पार्क में। तो वहाँ प्रभुपाद जी बैठे थे, उनके पास कोई माइक्रोफोन नहीं था, कोई मृदंग नहीं था, भागवतम का सेट नहीं साथ में था, उनके पास सिर्फ एक कारटाल था। वो बैठे बैठे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो वैसे कुछ हिप्पी लोग आए, फिर मुकुंड, उसको उनका नाम माइकल था, माइकल आया, फिर सब लोग चले गए। तो मुकुंड को ऐसे इंडियन म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक बजाते थे। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपका आश्रम कहाँ है और आप कब मिल सकते हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखो ये जो पेड़ है ना जिसके नीचे बैठा हो, ये मेरा आश्रम है, और आप मुझे 24 घंटे में कभी भी मिल सकते हो। तो शुरू में तो मुकुंड महाराज को ऐसे लगा कि प्रभुपाद जी थोड़ी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, फिर जो और बात की तो उनको पता लगा ये तो सच में स्वामी हैं, विदेश से आए, इनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है। तो अपने अपार्टमेंट में ले गए महाराज को, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को बोलो आप यहाँ रहो। दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जाकर उन्होंने दूसरा अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। प्रभुपाद जी को बोलो कि आप यहाँ पर रहो, अभी ये मेरा अपार्टमेंट आपका अपार्टमेंट, जब तक रहना चाहते हो आप रह सकते हो, और मैं पास वाले अपार्टमेंट में, जब भी आपको ज़रूरत पड़े मुझे बुला लिया करो। देखो ये जो समर्पित करते ऐसे जीवात्मा, वो जीवात्मा बहुत आगे बढ़ता है ना। तो श्याम और मुकुंड दोनों प्रभुपाद जी के पास आते हैं, और उन दिनों में 1970s और 80s में बीटल्स बहुत प्रख्यात थे। आप लोगों ने शायद सुना है कि बीटल्स का नाम, जो रवि शंकर वगैरह उनके साथ में भी बजाते थे, कभी बॉम्बे में आते थे, कभी यहाँ से वहाँ जाते थे, तो वो लोग प्रेम के गीत गाते थे। तो श्याम ने बोला कि प्रभुपाद जी ये लोग इतने अच्छे लव सॉन्ग्स गाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ मिस हो रही है, क्या ख्याल है आपने, क्या मिस हो रहा है? कृष्णा। किसने बोला? कृष्णा। आपने बोला कृष्णा। कृष्णा, सिर्फ कृष्ण का नाम मिस हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तो फिर आप दोनों जाओ इंग्लैंड जाओ, ये लोग अमेरिका बैठे, आप दोनों जाओ और उनको प्रचार करो, उनको बोलो कि कृष्ण का नाम जोड़ दें। देखो इन भक्तों में कितनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति, कि तुरंत उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग जाएंगे, दोनों शादीशुदा थे तो हम चारों जाएंगे। लेकिन समस्या था, रुपया तो कोई था नहीं। तो सोच रहे कि अभी एक दो दिन हम लोग हरिनाम करेंगे, पुस्तकों को वितरण करेंगे, टिकट के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे, फिर जाएंगे। तो सुबेरे सुबेरे श्याम सुंदर को एक चिट्ठी आती है, कहाँ से, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं ना, उनके वहाँ से एक चिट्ठी आती है। नॉर्मली जब इनकम टैक्स की चिट्ठी आती है तो लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कितना फाइन करेंगे, कितना पैसा मांगेंगे। लेकिन श्याम जब खोलता है अपनी चिट्ठी, तो उसमें क्या निकलता है, एक चेक निकलता है, और चेक में साथ में चिट्ठी है कि हमने गलती से आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया था, तो हम ये पैसे आपको वापस दे रहे हैं। कितना पैसा था? एग्जैक्टली 4 टिकट के लिए, एक आना ज़्यादा नहीं, एक आना कम नहीं, एग्जैक्टली 4 टिकट के। देखो गुरु में श्रद्धा रखने से क्या मिलता है, कैसे आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा हमें हमेशा होनी चाहिए। हम सोचते कि प्रभुपाद जी पृथ्वी को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी इस रूप में हमारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ में हैं। उनकी पुस्तक का अभ्यास करो कम से कम, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम दिन भर किसी न किसी तरह 1 घंटे में प्रभुपाद जी की पुस्तक का अभ्यास करूँगा। आधा घंटे में यूट्यूब में जाकर प्रभुपाद जी की वाणी सुनता हूँ, क्योंकि उससे मुझे उत्साह मिलता है। और ये भक्तजनों की, इनके बहनों की इतनी श्रद्धा थी प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने बोला आप जाओ, उन्होंने नहीं बोला कि अरे हम लोग लंदन कैसे जाएंगे, लंदन में तो हम किसी को जानते भी नहीं है, है? जैसे तमाल कृष्ण को बोला था महाराज को कि तुम चाइना चले जाओ, उसने भी जिद नहीं किया कि मैं चाइना कैसे जाऊँगा। ऐसे कई भक्तों को कहीं कहीं अलग अलग देशों में प्रभुपाद जी ने भेज दिया, किसी ने भी विरोध नहीं किया कि प्रभुपाद जी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें चाइनीज बोलना नहीं आता है। मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ कि हमें यहाँ तो, हम तो भारत भूमि में है, वो भी हमें ब्रजधाम में है, हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि ब्रजधाम में रहकर राधा रानी की कृपा पाकर हम लोग इतना प्रचार कर सकते हैं। है? जब ब्रजवासियों के साथ में मिलेंगे तो कथा का वार्तालाप लेंगे, तो उसमें भी हमें कितना आनंद मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं एक फाउंडेशन है, ब्रज फाउंडेशन, उनके साथ सेवा में लगा हूँ 2 महीने से, तो मैं जाता हूँ गाँव गाँव में, जहाँ जैसे हम लोग कुंड वगैरह की सेवा कर रहे हैं, तो जो कुंड दब गए हैं उनको दोबारा प्रकटित कर रहे हैं, जो वन दब गए हैं उनको हम फेंस लगा के 20,000 पेड़ लगा रहे हैं ऐसे। तो जैसे कि आप जाओगे गोवर्धन में, तो वहाँ शंकरसन कुंड है, रुद्र कुंड है, वैष्णव यथा शंभु, शंकर भगवान कौन है, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है, यस, है ना, वैष्णव यथा शंभु। जब भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, तो जब गोवर्धन को उठाते हैं, तो शंकर पार्वती की इच्छा होती है कि हम भी जाकर देखें कि भगवान अभी कौन सी लीला कर रहे हैं। वैसे तो मेडिटेशन में देखते ही रहते हैं, लेकिन वो उनको इच्छा होती कि हम जाकर देखें। इंद्र इतना सारा बरसा रहा है, सब तरह का बारिश फेंक रहा है, लेकिन भगवान तो आराम से खड़े हुए हैं, और सब गाँव वाले भगवान का नाम कथा कीर्तन में लगे हुए, किसी को कोई परवाह नहीं कि इंद्र ऊपर से क्या कर रहा है ना। तो जैसे भोलेनाथ अगर देखते हैं, तो उनका मन इतना मतलब मेल्ट हो जाता है, उनका भाव एकदम से आनंदित हो जाता है, कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जहां पर जो आंसू गिरते हैं उसको रुद्र कुंड किया गया है। तो वो भी दब गया था, अभी आप गोवर्धन में जाओगे वहां तो रुद्र कुंड हमने बनाया है। अच्छा, बहुत अच्छा कुंड है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ, छोटा सा मंदिर भी है। तो वैसे वैसे संकर्षण कुंड है, यहाँ जेट में भी कुंड है, यहाँ से 5 किलोमीटर पर रामताल है, रामताल में भी बहुत अच्छा मतलब कुंड वगैरह बनाया गया है। वो जगह भी वैसे कूड़ादान से नहीं दबा हुआ था, लेकिन वैसे ज़मीन से दब गया था। जब हम लोग ने वहाँ खुदाई की तो नीचे जो पुरानी 2 फीट बाई 2 फीट की ब्रिक्स आती है ना, वो निकली, और उसकी जैसे हम लोग नीचे गए तो 120 फीट बाई 140 फुट की 2 इंच थिक प्लेट निकली। और हमने जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया तो आर्कियोलॉजिस्ट आए, बोलते हैं कम से कम 3000 साल पुरानी जगह है, कम से कम। और रामताल वो जगह है कि जहाँ सबरी ऋषि बैठते थे। सबरी ऋषि का तो सुना होगा, क्या करते हैं 60,000 साल के लिए तपस्या करते हैं ना, पानी के नीचे जाकर। तपस्या जरूर करना जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग भगवान को सब कुछ समर्पित नहीं करते तो वही हालत होगी जो सबरी ऋषि की हुई थी। सिर्फ 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा, उसका मन पलट गया। इसलिए सब कुछ समर्पित करते हुए तपस्या करो, और समर्पित किसको करना है, कान्हा को करना है, राधा श्याम सुंदर को करना है, कृष्ण बलराम को करना है। अगर हम इसी तरह समर्पित करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। श्याम और मुकुंद दोनों लंदन गए, वहाँ उनको एयरपोर्ट में एक आदमी मिल गया जो सिर्फ फलों की मार्केट करता था। तो एकदम से आकर्षित हो गया, अंग्रेज लोग हैं, बाल नहीं है, उनको पिकटेल बोलते हैं शिकागो। तो आकर पूछने लगा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग प्रचारक हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हम नए हैं, हमें मालूम नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं। तो एयरपोर्ट में वो जो फल बेचता तो आदमी बोलता, आप मेरे घर में रह सकते हो, जितना भी फल खाना खा सकते हो, आप लोग शाकाहारी है, जितना भी फल खाना। भगवान हर चीज़ के लिए आपके लिए यू नो अरेंजमेंट करते हैं, कभी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। आपकी श्रद्धा सही है, ज़रूरत है, ज़रूर है कि कभी ना कभी तपस्या करते करते कोई ऐसे मतलब कठोर तपस्या भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी समस्या बड़ी है तो ये समझो कि भगवान आपको कोई ऐसा दिव्य दृष्टि या तो एवं दिव्य मार्ग दिखाना चाहते हैं कि आपकी तपस्या के द्वारा आपको वो आनंद मिलेगा जो आपने कहीं जन्मों से नहीं देखा, ऐसे मिलता है। अरे श्याम सुंदर ने एक जो पुस्तक लिखी है ये बीटल्स के बारे और अंत में बीटल कैसे देह छोड़ता है, आप वो पढ़ोगे तो आपका हृदय भी एकदम से धड़क धड़क होएगा कि क्या एक इतना बड़ा आदमी जो जॉर्ज हैरिसन था, जिसके पास सब कुछ था, वो भी इतनी भक्ति कर सकता था। जब उनको फ़ोन किया गया कि हम लोग कृष्ण भक्त थे, हम लोग अमेरिका से आए, हम आपको मिलना चाहते हैं, जॉर्ज हैरिसन क्या बोलता है, आपको तो मालूम जब बहुत बड़े लोग हो तो फ़ोन भी नहीं उठाते। तो जब उनको पता लगा कि कोई कृष्ण भक्त आए तो उन्हें फ़ोन ले लिया, बात किया, हाँ जी मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप लोग कब मेरे पास आओगे। देखो एक अरबोपति आदमी है, वो ये क्या बोलता है कि मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि ये हरे कृष्ण वाले मेरे पास कब आएंगे। आश्चर्य की बात है ना, कभी हमें ये ना सोचना चाहिए कि ये आदमी बहुत बड़ा है तो इसके पास हम कैसे जाए, या तो आदमी बहुत छोटा है इसके पास हम क्यों जाए। आपको ये मालूम नहीं कि उनके हृदय में भगवान बैठे, कौन सी कला करने वाले हैं, कौन सी लीला करने वाले, किस वक्त आपको नहीं मालूम है, लेकिन श्रद्धापूर्वक जाओगे तो गारंटीड है कि आपको बहुत अच्छा अनुभव होएगा। उनका कॉन्सर्ट था उसी दिन रात को, तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि तुम लोग इस हॉल में इतने बजे आ जाना, क्योंकि मेरा 7 बजे कॉन्सर्ट है, तो 6 बजे मैं आपको मिलूँगा। तो उसी रूम में जहाँ आने के लिए बोला था, वहाँ बहुत अमीर लोग भी खड़े थे, मीडिया वाले भी खड़े थे। तो जब जो जाकर और जो हमारे 2 भक्त थे, जैसे ये लोग नीचे बैठे ऐसे 2 भक्त एक कोने में बैठ गए थे, धोती वाइट धोती कुर्ता में। जॉर्ज हैरिसन जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि भक्त लोग कहाँ हैं, इतने सारे मीडिया वाले सब लोग उसी तरह भागते, ऐसे हाथ करता है, ऐसे ऐसे करता है, सब वस्ता कर दो। और दोनों जो कोने में बैठे थे उनके पास जाकर नीचे बैठ गया उनके पास। आप बिलीव नहीं करो, वो व्यक्ति जिसके लिए सारी दुनिया पागल है भौतिक रूप से, वहाँ इतने हज़ारों लोग उसके कॉन्सर्ट के लिए खड़े हुए हैं, उसने बाकी जो छह उसके साथी थे उसको मैसेज भेज दिया एक घंटे के बाद, ये कॉन्सर्ट आप लोग ही करोगे, आज मैं नहीं आऊँगा। उसको कृष्ण भावना मृत में इतना रस लग गया कि वो वहाँ से हिलना ही नहीं चाहता था। यह है भगवान का नाम का महिमा। अगर हम लोग भक्ति सही भावना से करेंगे, भगवान का नाम सही भावना से करें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से करो, वो देख ही रहा है आपको, जिसको देखना है वो देख ही रहा है, प्रभुपाद भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या करें, बाकी दुनिया देखे ना देखे उसका हमें कोई परवाह नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े हमारे संत हो गए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, इतने जो भक्त लोग हो गए, संत हो गए, आप उनकी लीला कथा सुनोगे तो आप आश्चर्य हो जाओगे कितने कितने बड़े बड़े घरों से आते थे। जैसे हमारे छह गोस्वामी है, उसका भी आप अभ्यास करो उनकी लीलाओं के, तो कितने बड़े बड़े घर से, कितने घरे बड़ी बड़ी पदवियों से आते, सब कुछ छोड़ के भक्ति में लगे, सिर्फ समर्पण करना पड़ता है। अगर हम लोग ऐसे सब कुछ समर्पित कर देंगे तो हमें अवश्य गारंटीड है कोई ना कोई अनुभव होएगा। आप मायापुर में जाते हो, यहाँ आते हो, विदेश में जाकर प्रचार करो, कहीं भी प्रचार करो, आप जहाँ भी भक्तों को मिलोगे तो आप जब कथाओं में लग जाओगे तो आपको पता लगेगा, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, मत चित मत गत प्राण बोधयांतस्य परस्परम कथियांतस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, रमन्ति च, वो आनंद का अनुभव करवाना है तो आपको कथा तो करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ में, और दूसरों को प्रचार करते वो भी कथा है, दूसरों से कथा सुनते वो भी प्रचार है, वो भी कथा है। तो इन चीज़ों में हमें डूबे रहना है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान के बारे नहीं सोच रहे, कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान के समय सामने झुक नहीं रहे हैं। हमारा मन हमेशा त्रिनाद अपि सुनी चेना तरो रिवा सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनिया सदाहरी, इसी भाव से जैसे पेड़ की तरह है, घास की तरह झुके रहना है भगवान के सामने, भक्तों के सामने, और उसी भाव से उसी भक्ति से हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो हमें वो चीज़ मिलेगी जो भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में कोई कभी नहीं दे सकता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे से ये भक्ति का जो आनंद है वो नहीं मिल सकता है। लेकिन कान्हा को हम सब कुछ समर्पित करते हैं तो हमें वो आनंद मिलता है कि जिसकी बात आपको भौतिक संसार में जो लोग आनंद लेते हैं वो एक सिर्फ कूड़ेदान की तरह लगेगा, गंदगी की तरह लगेगा, क्योंकि आपको मालूम कि सब चीज़ टेम्पररी है। आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं कि किसी को समोसा अच्छा लगता है, ठीक है, कितना खा सकते हो, दो खा लिया, चार खा लिया, आठ खा लिया, आप बड़े तगड़े हो, दस खा लिए, सब तगड़े से तगड़ा आदमी भी 20 खाएगा तो उसकी क्या हालत होएगी, हाँ, उसको कोई चूर्ण नहीं लेना पड़ेगा, अपने आप भागेगा, है ना। तो इस सिंपल उदाहरण है कि भौतिक संसार में कोई भी चीज़ हमें आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकता है, सनातन सुख नहीं दे सकता है। हमें तो वो सुख चाहिए कि जिसके द्वारा हमें सुख हमेशा हमारे साथ में रहे और दोबारा कभी भटकना ना पड़े, दोबारा कभी जन्म ना लेना पड़े। जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम एंड अंत काले महादुखम। सोचो अंत काले महादुखम चाहिए आपको कि अंत काले महासुखम चाहिए, आपके हाथ में है। प्रभुपाद जी तो हमको देकर गए, आपको महासुख पाना तो पा सकते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं पाओगे तो महादुख तो आना ही आना है। एक बिच्छू काटता है तो जीवन का अंत हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। तो जो अंत काले महादुखम बताया गया है, जब यमदूत आके छोटा मार मार के आपको ले जाते हैं तो वो 100 बिच्छू काटते उसके बराबर बताया गया है। तो इसलिए ये चीज़ को समझकर हम लोग कदम आगे बढ़ाए, है ना, भगवान का नाम जप करें। और हमारे लिए इस युग में तो बहुत सरल है, चैतन्य महाप्रभु जी ने इतनी कृपा की है, सिंपल बताया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका धन्यवाद हमारी टूटी फूटी हिंदी सुनने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है? या तो किसी का कोई कमेंट है या तो कोई अभ्यास भी है जिससे हम सबको लाभ मिले। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी।